ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज बड़ा ही पावन दिन है। श्रीमती राधा ठाकुरानी कृष्ण को वृंदावन में कहा जाता है ठाकुर। तो उसी प्रकार से जो श्रीमती राधा रानी है वो ठाकुर रानी है ब्रज की। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है जिसका वर्णन ब्रह्मवल्लभ पुराण में कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं, मेरे लिए भी असंभव है श्रीमती राधिका का जो महिमा है उसका गुणगान करना। तो इसलिए बहुत ही कठिन है श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन करना। तो लेकिन राधा रानी की कृपा से ही कोई उनका गुणगान कर सकता है। और विशेष रूप से हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यगण कहते हैं कि राधा रानी की महिमा वही व्यक्ति वर्णित कर सकता है जिसकी प्रगाढ़ आसक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु में है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना, चैतन्य महाप्रभु को समझे बिना कोई भी जीव कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है श्रीमती राधा रानी की महिमा का उच्चारण अपने जीवा से करने के लिए। इसी कारण से कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में वही बात कहते हैं, तद बावड्य समझनो सची गर्व सिंधु हरिंदु। एक श्लोक में वह कहते हैं तद बावड्य, कौन सी भावना को समझने के लिए है, साक्षात वृंदावन आदिनाथ। कृष्ण का एक नाम है वृंदावन आदिनाथ, वृंदावन के आदिनाथ है कृष्ण, वही वृंदावन नाथ। उस भावना को समझने के लिए है सची गर्भ सिंधु, सची माता का जो गर्भ है उसकी तुलना कृष्णदास कविराज एक सागर से करते हैं। सची गर्भ सिंधु हरिंदु, हिंदु मीन्स मून चंद्रमा। तो सची माता के गर्भ से चंद्रमा के समान चैतन्य देव का अवतरण हुआ। केवल क्या उसका प्रयोजन था, श्रीमती राधा रानी की भावना को समझना। तद भावाढ्य समझनो सची गर्भ सिंधु हरिंदु। इसलिए आचार्यगण कहते हैं महाप्रभु की कृपा के बिना राधा तत्व का आकलन होना असंभव है। क्योंकि शास्त्रों में भी श्रीमती राधा रानी गुह्य रूप से हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब इस संसार में अवतरित होते हैं वो क्या करते हैं, राधा रानी की महिमा को त्रिभुवन में उजागर करते हैं। इसी कारण से वासुघोष कहते हैं कि ऐसे महाप्रभु यदि नहीं होते तो राधा रा महिमा प्रेम रस सीमा, प्रेम तो है लेकिन उसकी जो परमोच्च सीमा है वो चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाए हैं। और वास्तव में यह आंदोलन इसलिए है कि राधा रानी की जो प्रेम महिमा है उसको केवल समझने के लिए। यदि चैतन्य चरितामृत का आदि लीला हम पढ़ते हैं
तो उसमें सरलता से हाँ जो मंतव्य है कृष्णदास कविराज वर्णित करते हैं, और यही चीज देने के लिए राधा रानी की महिमा को देने के लिए, राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने के लिए ये आंदोलन है, और इसी को चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए वो कृतज्ञता वर्णित करते हैं वासु घोष कि यदि महाप्रभु नहीं होते तो ये राधा रानी की महिमा भी हमारे सामने प्रकट नहीं होती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को पहले समझना परम आवश्यक है यदि हम राधा रानी को तत्व को समझना चाहते हैं। इसलिए कृष्णा के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा आनंददायी है, मैं भी हमारे लिए बहुत सरल है राधे राधे वर्णित करना, लेकिन राधा रानी इतनी कोई सरल नहीं है। इसलिए कई जो अलग अलग संप्रदाय के लोग और अलग अलग जो पंडित गण है वो वक्तव्य करते हैं कि ये गौड़िया इसको क्या हो गया है, इन लोगों ने राधा रानी एक सर ये राधिका कोई सर्वसाधारण युवती है ब्रज की जिसको इन्होंने लक्ष्मी का स्थान दिया है। हाँ तो लेकिन ऐसा नहीं है, गौड़ी आचार्य जन कोई मूर्ख नहीं है कि सर्वसाधारण स्त्री को लक्ष्मी का स्थान प्रदान करें। कई बार वो अपना कुतर्क प्रस्तुत करते हैं कि श्रीमद् भागवतम में राधिका के नामों का उच्चारण नहीं है, लेकिन दशम स्कंद के रास पंचाध्याय को खोलते हैं तो सरलता से कितने स्थानों में श्रीमती राधा रानी को कई नामों से पुकारा गया है। जब शरद काल में रास क्रीड़ा की शुरुआत का शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं पहले श्लोक में एक अध्याय के, उसमें श्रीमती राधा रानी को योग माया कह के पुकारते हैं, और कई स्थानों में रमा हाँ रमा कह के उच्चारण करते हैं, एक जगह गोपी विशेष गोपी कह के उच्चारण करते हैं। तो भागवतम के पन्नों में वास्तव में श्रीमती राधा रानी की महिमा छुपी हुई है, और लेकिन वो उजागर हो सकती है केवल कोई व्यक्ति गौड़िया आचार्यों का आश्रय लेता है और श्रीमद् भागवतम को समझने का प्रयास करता है। भागवतम को समझने का अर्थ है श्रीमती राधा रानी की जो परम महिमा है, कृष्ण के प्रति जो उनकी प्रेममयी सेवा की भावना है उसको समझना। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का जो आविर्भाव है ये वास्तव में कृष्ण के लिए सबसे अधिक आनंददायी दिन है। इसी कारण से और केवल कृष्ण के लिए नहीं बल्कि चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, विशेष रूप से इस संप्रदाय के जो गौड़ीय आचार्य गण हैं, उनके लिए भी आज का दिन अत्यंत मूल्यवान है। इसी कारण से हमारी पहचान अलग है। हाँ मैं भी हम मध्वाचार्य के संप्रदाय में हैं, लेकिन हमारी पहचान क्या है, हम रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत हैं। इसी कारण से एक भक्त को रूप गोस्वामी की जो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से उन्होंने प्राप्त की है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे आचार्य गण हैं वो श्रीमती राधा रानी के डायरेक्ट सेवक हैं, और यही चीज महाप्रभु प्रदान करने के लिए आए हैं। आचार्य गण गुरु वृंदा महा इस राधा रानी की सेवा चाहे सखियों के रूप में, मंजरियों के रूप में, अलग अलग गोपिकाओं के रूप में करते हैं। तो ऐसा श्रीमती राधिका का सेवा का अधिकार प्राप्त हो सकता है केवल कोई व्यक्ति इन गौड़ीय आचार्यों के अनुगत होता है, और ये अधिकार और फिर कृष्ण की सेवा का अधिकार कैसे मिलेगा यदि व्यक्ति राधा रानी के अनुगत होता है। तो इसी कारण से ये जो गौड़ीय आचार्य गण है वो विशेष है हमारी परंपरा, हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, आचार्यों की शिक्षाओं को समझना चाहिए श्रील प्रभुपाद के अनुगत होकर। हाँ इसी कारण से राधा रानी की जो सेवा है वो इस संप्रदाय की सर्वोच्च सेवा है। आचार्यों में दो ग्रुप है, एक ग्रुप है हाँ कृष्ण के और कुछ आचार्य गण है, मैं भी चतुर संप्रदाय के यदि देखे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि दो प्रकार के आचार्य गण है, एक दो पार्टियां हैं। हाँ जब भौतिक संसार में भी कई सारी पार्टियां हैं, हाँ हम भक्त बनने के बाद भी पार्टियों में बने रहते हैं, लेकिन यहाँ आचार्य गणों की भी पार्टियां हैं। एक पार्टी है कृष्ण की और एक है राधिका की। तो जो कृष्ण के पार्टी के अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग आचार्य हो सकते हैं अलग अलग संप्रदायों के, लेकिन ये जो गौड़िया आचार्य हैं, ये कौन से दल के भक्त है? सारे राधा रानी के दल के। हमारे संप्रदाय की सर्वोच्च सेवा है श्रीमती राधा रानी को सर्व करना। इसी कारण से रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन शिक्षा के पहले श्लोक में लिखते हैं, गुरु को एक शिष्य को इस प्रकार से देखना चाहिए, राधा प्रष्ट सखी, ये शब्द यूज करते हैं। गुरु को कैसे देखना है शिष्य को, किसके प्रिय है मेरे गुरुदेव? राधा रानी के प्रिय है। और वास्तव में ये संप्रदाय का ये विशेष दृष्टिकोण है आध्यात्मिक गुरु को देखने के लिए। तो इसलिए हमारे संप्रदाय के जो आचार्य गण है वो राधा रानी के दल है, दल में है। तो भौतिकता वाले लोग सोचते हैं ये राधा रानी है कौन? हम भी जब छोटे थे तो ये राधा रानी का नाम कभी सुना नहीं था। कृष्ण पता थे लेकिन राधा रानी पता नहीं थे। महाराष्ट्र में एक ऐसा संप्रदाय भी है जो राधा रानी का नाम भी नहीं लेना चाहता, वो दूर भागते हैं। हाँ, बस कृष्णा, कृष्ण के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करते, इवन देवी देवता को भी नहीं। तो उनको तो ऐसी जलन है श्रीमती राधा रानी से, लेकिन ऐसे मूर्ख लोग नहीं जानते जीवन की परमोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए श्रीमती राधा रानी की अनुकंपा परम परम आवश्यक है। तो हम समझेंगे कि ये राधा रानी है कौन और किस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये राधा रानी सर्वाधिका है। सर्वाधिका मीन्स कृष्ण से प्रेम करने में उनसे और कोई बढ़कर नहीं है। इसलिए राधा रानी को कई प्रकार से समझा जा सकता है, लेकिन सबसे पहली चीज है, हाँ, ये राधा रानी कौन है? तो शास्त्र कहते हैं कृष्ण के अनुकंपा की मूल रूप। हाँ, कौन है राधा रानी? कृष्ण की अनुकंपा जब अपना मूर्तिमान स्वरूप धारण करती है तो वो श्रीमती राधिका है। और इस प्रकार से हमें, हाँ, श्रीमती राधा रानी को देखना चाहिए और समझना चाहिए। और तभी कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी स्थान में कृष्ण के प्रति प्रेममय सेवा की भावना जागृत हो कर सकता है जब वो राधा रानी के कृपा का कटाक्ष अपनी ओर प्राप्त करता है। इसलिए शिवजी आदि जितने भी बड़े बड़े ऋषि देवतागण हैं, ब्रह्मा हैं, योगीज हैं, मुनिंद्राज हैं, ये सब लोग एक आशा लेकर बैठे रहते हैं कि राधा रानी की कृपा का कटाक्ष मेरी ओर चाहिए। उनकी कृपा का कटाक्ष हो गया तो स्वाभाविक रूप से एक साधक के हृदय में भगवान के प्रति तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भगवत भक्ति जागृत हो सकती है। और इसलिए जो बड़े बड़े देवतागण, जैसे कि बरसाना में ब्रह्मा जी क्या है, स्वयं बने हैं एक पहाड़ बने हैं, ब्रह्मगिरी जो पहाड़ है बरसाना का, जिसके चार मुंह हैं, चार ऐसे खुड हैं जिसके ऊपर बरसाना निवास करता है। तो ब्रह्मा ने एक बार कृष्ण से प्रार्थना की थी। ब्रह्मा ने कहा था कि हे कृष्णा, मुझे, मैं तो आपकी नित्य लीलाओं को नियमित रूप से देखना चाहता हूँ। और हम वो कहते हैं, ममो परि सदा त्वहिं रास क्रीड़ा करिष्यसि, मैं आपकी क्रीड़ाओं को देखना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर नृत्य आदि कीजिए। तो कृष्ण उन्हें कहते हैं, ततो ब्रह्मन् व्रजं गत्वा वृषभानो पुरंगता पर्वतो भवसि त्वं हि मम क्रीड़ा च पश्यसि। अरे ब्रह्मा, तुम जल्दी जाओ व्रज में, वहां जाकर एक पर्वत का स्वरूप धारण करो और मैं आपके ऊपर मेरी जो प्रिया है श्रीमती राधिका, उनके संग में कई प्रकार की क्रीड़ाएं करूंगा। और नित्य रूप से उन क्रीड़ाओं को तुम क्या कर सकते हो, अपने आंखों से देख सकते हो। कितने सौभाग्य वाले ब्रह्मा, एक दो आंखें नहीं है, चार सर है, चार मुंह है, तो उनके पास देखने के लिए कितनी आंखें हैं? आठ। एक बार श्रीमती राधिका ने, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि एक शिवजी की बड़ी आप स्तुति करते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये शिवजी के पांच पांच मुख क्यों हैं। हम गाते ना, पंच वदने महादेव राम राम हरे हरे। महादेव अपने पांच मुखों से ओरिजिनली शिवजी के पांच मुख हैं। शिवजी सदैव गुणगान करते रहते हैं। तो राधिका ने पूछा एक बार कि क्यों शिवजी के इतने पांच पांच मुख हैं? तो कृष्ण ब्रह्म वेद पुराण में वो संवाद आता है जिसमें कहते हैं कि ये शिवजी का आप मेरे नामों का उच्चारण करने में, हमारी महिमा का गान करने में बहुत अनुराग था। और फिर उनको कहा गया कि आप विवाह करिए। शिवजी कहते मुझे विवाह नहीं करना है, मैं तो आपके गुणों का गुणगान करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय तो उनके पास एक ही मुंह था, दो ही आंखें थी, लेकिन जैसे उन्होंने कहा मैं तो आपके नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करना चाहता हूँ, अनंत समय के लिए वर्णन करना चाहता हूँ, श्रवण करना चाहता हूँ। तो कृष्णा से जब वो संवाद कर रहे थे शिवजी, तो उसी क्षण हाँ उनके पांच मुख हो जाते हैं और सारे मुखों से हाँ कृष्ण का वो गुणगान करने लगते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण की अनुकंपा का मूर्तिमान स्वरूप है, उनकी कृपा कटाक्ष की कामना सारे देवता आदिगण करते हैं और कोई व्यक्ति उनको सर्व करता है। राधा रानी को कैसे सर्व करता है? भक्तों की सेवा और हरि नाम की सेवा करके। तो स्वाभाविक रूप से वो अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो ऐसे जो कृष्ण है उनकी कई भावनाओं में कई प्रकार से सेवा की जा सकती है, और विशेष रूप से भगवान कृष्ण की सेवा की जाती है पांच रसों में। रूप गोस्वामी उसको रति शब्द यूज करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण की कई प्रकार से सेवा की जा सकती है भावों में, जो पांच प्रकार की रति है, शांत दाश्य वात्सल्य सख्य और माधुर्य। लेकिन कोई कहे कि एक रस या एक प्रकार का रति या एक प्रकार की भावना सर्वत्र प्रश्न है, तो रूप गोस्वामी कहते नहीं, अपने अपने स्थान पर ये अलग अलग जो भाव है, रस है, रति है, वो परिपूर्ण है। कोई भी जीव किसी भी रस में या भावना में स्थित हो सकता है और कृष्ण की सेवा कर सकता है। उस भावना में, उस रस में वो जीव भगवत सेवा में पूर्ण संतुष्टि अनुभव करता है और वो भगवान की सेवा करता है। और ये तभी संभव है जब वास्तव में उस जीव के हृदय में विशुद्ध सत्व की जागृति हुई हो। जब तक व्यक्ति तीन गुणों के प्रभाव में है, तब तक ये सारे जो रस है उसके लिए एक स्वप्नवत है। हम में भी ढोंग कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जब तक व्यक्ति भौतिक कल्मषों से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति इन रसों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। पराभक्ति महावर्णन करते हैं कि वो पराभक्ति की आवश्यकता है, तब व्यक्ति इन रसों में हाँ क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। और परा का अर्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठता, सर्वोच्चता। परा मीन्स जिसमें कोई मिश्रण नहीं हो, मिश्र भक्ति नहीं हो। हमारी भक्ति मिश्रण क्या है? दो प्रकार का मिश्रण है, एक है भौतिक इच्छाओं का मिश्रण और तीन गुणों का मिश्रण भगवत भक्ति में, जिसके कारण में भक्ति सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अलग अलग प्रकार से कहलाती है। तो एक भक्तों को देखना चाहिए कि मैं कौन से गुण में भक्ति कर रहा हूँ। लग रहा है कि भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन जीवन भर उस गुण के अधीन होकर वो भगवत भक्ति की प्रैक्टिस करता रहता है, साधना करता है। तो जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि से परे नहीं होगा, तब तक वास्तव में इन रसों में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए रूप गोस्वामी को कहा जाता है रसाचार्य। रसाचार्य महाप्रभु ने कहा कि रूप गोस्वामी विशेष आचार्य है। क्या है उनमें विशेषता? जो रसों का विश्लेषण करना जानते हैं। इसलिए उनके दो ग्रंथ बहुत मूल्यवान है, एक भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है उज्ज्वल नीलमणि, जिन्होंने आज तक किसी व्यक्ति ने आचार्य ने रसों का विश्लेषण इस पृथ्वी में नहीं किया था, जो विश्लेषण विशेष रूप से रूप गोस्वामी ने प्रदान किया है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि सारे रस सर्वोत्कृष्ट है, मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, लेकिन क्रमशः यदि इन रसों को देखा जाए तो एक रस सर्वोत्कृष्ट है, और वो कौन सा रस है? रूप गोस्वामी कहते हैं माधुर्य रस, जिसको कहते हैं श्रृंगार रस, क्योंकि इन रसों की मिठास और अधिक बढ़ते जाती है, और सर्वोच्च जो मिठास है भगवत सेवा की, वो एक भक्त अनुभव करता है केवल माधुर्य रस में। इसलिए हाँ ये कहते हैं कि भगवत भक्ति की तीव्रता के द्वारा ही उस रस को समझा या अनुभव किया जाता है, और वही चीज चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने के लिए आए हैं। चैतन्य महाप्रभु इस माधुर्य रस को देने का एक में उनका प्रयोजन है, और ऐसे ये जो माधुर्य रस है वो दो भागों में विभाजित है, एक है स्वकीया और दूसरा है परकीया। स्वकीया का मतलब है कि जो सेवा की भावना लक्ष्मी और जो द्वारका की रानियां हैं, मतलब विवाह के अंतर्गत कृष्ण की सेवा करने के जो गुण है वो स्वकीया है, लेकिन वृंदावन क्या है? परकीया रसे यहां कृष्णदास कहते हैं कि वृंदावन तो परकीया रस का स्थान है, जो कृष्ण के प्रति सेवा का परमोच्च भावना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मत मंजुषा में कहते हैं रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता। महाप्रभु को यदि कोई प्रश्न पूछे कि हे चैतन्य देव बताइए आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो कृष्ण की सेवा कर रहे हो, सेवा का प्रोसेस कौन सा है और उस प्रोसेस में किसने सफलता प्राप्त की है या किसके अनुगत होना चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रम्या काचित उपासना। हमारी प्रोसेस क्या है? वृंदावन की जो रमणीया है गोपिकाएं हैं, उन्होंने जिस विधि का पालन किया है कृष्ण की सेवा के लिए, उस विधि को हमें सीखना और उस विधि के द्वारा कृष्ण की सेवा करना, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। इसलिए इवन सारे आचार्य शंकराचार्य को भी ले लो, शंकराचार्य ने इन गोपिकाओं की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए गोपिका अष्टकम लिख दिया। शंकराचार्य शिवजी हैं और वो भी कृष्ण की नित्य सेवा है, नित्य सेवा में है, परिकर है, लेकिन भगवत आज्ञा से मायावाद का प्रचार करने के लिए कलो ब्राह्मण रूपेण कलयुग में एक ब्राह्मण के रूप में वो आए थे, इसलिए शंकराचार्य भी इन गोपिकाओं की स्तुति करते और कहते हैं कि राधिका सर्वाधिका, ये कृष्णदास केवराज के शब्द है, वो कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, इसलिए कोई व्यक्ति को बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए। श्रीमती राधा रानी की जो पोजीशन है उसको आचार्यों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। गौड़िया वैष्णवगण कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी क्या है, जिस प्रकार से कृष्ण सारे अवतारों के उद्गम है उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी सारे अवतारों के उद्गम है, स्रोत है। कृष्णदास कविराज एक श्लोक में कहते हैं अवतारी कृष्ण छय करे अवतार अंशली राधा है ते तीन गने रविस्तार। तो वो कहते कि जिस प्रकार से कृष्ण से सारे अवतार निकलते हैं उसी प्रकार से राधा रानी से तीन प्रकार के विस्तार होते हैं उनके इस कृष्ण लीला में। एक तो है ब्रज की जितनी गोपिकाएं हैं वो राधा रानी के विस्तार हैं, और द्वारका की जितनी रानियां हैं महिषीगण वो राधा रानी के विस्तार हैं, और जो नारायण की भार्या है लक्ष्मी देवी वो भी राधा रानी के विस्तार है, तीन गणेर विस्तार। इस प्रकार से राधा रानी सारे इन गोपिका आदियों के मूल स्त्रोत हैं या स्रोत हैं। जिस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण को शक्तिमान कहा जाता है, कृष्ण को सर्वशक्तिमान कहते हैं, जिसका अर्थ है कृष्ण सारे शक्तियों के मूल स्त्रोत हैं, इसलिए प्रभुपाद लिखते पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभावति ज्ञान बल क्रिया च। कृष्ण तो सारे शक्तियों के स्रोत है, हाँ, और जब तक शक्तियां नहीं है उनको भगवान नहीं कहा जा सकता, शक्तिमान नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई कहे कि मैं राजा हूं लेकिन उसके पास प्रजा ही नहीं है, हाँ, तो उसी प्रकार से शक्तिमान वो है जिनके पास शक्तियां हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान की दो प्रमुख शक्तियां हैं, शक्तियों के दो प्रमुख विभाजन हैं। एक है बहिरंगा जिसको कहते हैं बाहरी, और दूसरी है अंतरंगा। बहिरंगा का मतलब है जो अपरा शक्ति है, निकृष्ट है, जड़ है, अचेतन है, हाँ? तो ये बहिरंगा एक शक्ति है भगवान की, भौतिक शक्ति, और दूसरी है अंतरंगा शक्ति जिसको कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति, जिसको कृष्ण कहते हैं गीता में परा, मेरी जो परा शक्ति है। वैसे देखा जाए शास्त्र कहते हैं भगवान की एक ही शक्ति है, लेकिन ये एक शक्ति जब अलग अलग कार्य करती है, जिसके कारण हमें समझ में आने के लिए शास्त्रों में इस एक ही शक्ति के अलग अलग नामकरण किए गए हैं। जिस प्रकार से किसी का एक सेवक है घर में, और वही सेवक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, कुकिंग भी करके कभी मालिक को खिलाता है, कभी ड्राइविंग भी करता है, तो उसी सेवक को क्या कहते हैं, ये मेरा कुक है, ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन है एक ही व्यक्ति। उसी प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं कृष्ण स्वामी है और उनकी एक शक्ति है। कृष्णदास कविराज कहते हैं ये एक शक्ति जब तीन प्रकार के कार्य करती है, इसलिए उनके तीन प्रकार के नाम हैं, आनंदांशे आह्लादिनी सतांशे संधिनी चिदांशे सम्मित जारे ज्ञान करिमानी। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं आनंदांशे आह्लादिनी, आनंद प्रदान करती है वो शक्ति, इसलिए उसको आह्लादिनी कहा गया है। और दूसरी शक्ति है संधिनी, संधान, या कृष्ण अपना अस्तित्व जिस शक्ति के द्वारा मेंशन करते हैं, या जिस शक्ति के द्वारा सारे जगत का अस्तित्व बनाए रखते हैं, या फिर अपनी सेवा में जितनी वस्तुएं नियोजित करते हैं, चाहे उनके माता पिता, उनका बेड, शय्यासन, उनकी सेवा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, वो सारे संधिनी शक्ति के रूप हैं। और वो शक्ति की प्रमुखता क्या है, सत मतलब शाश्वतता, और दूसरी शक्ति है संवेद। वेद का मतलब है नॉलेज या ज्ञान, चारणा, मतलब ये जो दूसरी शक्ति है संवेद, जिसके द्वारा कृष्ण अपने आप को जानते हैं, या कोई जीव इस शक्ति के माध्यम से किसको जान सकता है, कृष्ण को जान सकता है। हाँ, यदि किसी भक्त के हृदय में नाम रूप गुण लीला बहुत अधिक बढ़ रही है, इसका मतलब है उस व्यक्ति के हृदय में संवित शक्ति का प्रवेश हो गया है, या प्रवेश हो रहा है, जिसको चित्त शक्ति कहते हैं, ज्ञान, नॉलेज। और तीसरी शक्ति है आह्लादिनी, आह्लादिनी शक्ति वो है जिसके द्वारा कृष्ण आनंद की अनुभूति करते हैं, या कृष्ण की कृपा से जीव भक्तिमय सेवा में आनंद की अनुभूति करता है, और उस आह्लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। और वही आह्लादिनी शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी है। तो इस प्रकार से राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति के हृदय में, हाँ, कोई व्यक्ति सम्मित शक्ति के द्वारा भगवत सेवा को जानता है और उसमें लगता है, और उस सेवा के माध्यम से फिर उस व्यक्ति के हृदय में आह्लादिनी शक्ति का प्रवेश होता है, और उस प्रवेश के द्वारा एक भक्त थोड़ी सी भी आह्लादिनी शक्ति की कृपा हो किसी के ऊपर, तो आध्यात्मिक आनंद से वो पागल हो जाता है, जिसको शुक्रदेव गोस्वामी ने भागवतम के दूसरे स्तर में वर्णन किया है, हासती रोदती गायती। कहते वो व्यक्ति फिर किसी की परवाह नहीं करता, वो कृष्ण नाम और गुण लीला में इतना मग्न रहता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, और भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करता है। तो ऐसी आह्लादिनी शक्ति केवल कृष्ण की कृपा से ही संभव है किसी व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करना। और ये अलादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप कौन है? श्रीमती राधा रानी है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। कि महाभाव स्वरूप, महाभाव की स्वरूप है राधा ठाकुरानी। वो कहते हैं सर्वगुण खनि, सारे गुण उनमें है। कृष्ण कांता शिरोमणि, कांता मतलब प्रियसी, प्रेमिका। कृष्ण की जितनी प्रिय प्रेमिकाएं हैं उनमें जो श्रीमती राधा रानी है वो शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ है। और कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसाय। राधा रानी की एक विशेषता का वर्णन करते हैं आदि लीला। वो कहते हैं, कृष्ण प्रेम भावित जार चित्त इंद्रिय काय, जिनका चित्त, जिनकी इंद्रिया और जिनका शरीर कृष्ण की प्रेममयी भावना से बना हुआ है या भरा हुआ है, ऐसी श्रीमती राधा रानी क्या है? उनके क्रीड़ा की सहायक है। इसलिए बरसाना के पास एक गांव है चिक्सोली जिसे कहते हैं, तो चिक्सोली में श्रीमती राधा रानी एक बार सुबह सुबह अपने सखियों के संग में जाती हैं, ललिता आदि के साथ। और चिक्सोली चित्रा सखी का गांव है। तो ये जो चित्रा सखी है वो बहुत सारे कलाओं में निपुण थी। एक था चित्र बनाना, पेंटिंग्स को बनाना। तो ऐसी जो चित्रा सखी के पास वहां वो पहुंची, तो चित्रा सखी ने अभी अभी एक सुंदर कृष्ण का एक पेंटिंग बनाया था। और जैसे ही उस पेंटिंग को उन्होंने देखा, तो वैसे ही जो श्रीमती राधा रानी है वो क्या करती है, अपना जो हृदय है उस जो पेंटिंग जो देखा उसको अर्पित कर देती है। और उसी क्षण दूर से राधा रानी के कानों में वेणुनाद भगवान के बांसुरी की ध्वनि प्रवेश करती है। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि प्रवेश कर गई, तो श्रीमती राधा रानी ने, जो व्यक्ति इस बांसुरी का वादन कर रहा है उसको मैं अपना मन अर्पित कर रहे हूँ। पहले तो उन्होंने उस पेंटिंग को अपना हृदय दे दिया, वेणुनाथ को अपना मन दे दिया। और थोड़ी देर के लिए उनके चित्रा सखी के घर से बाहर निकलती है, तो दूर से देखती है कि कोई युवक गवों को चराते हुए वहां से जा रहा है। तो राधा रानी का जो शरीर है वो कंपित होने लगता है। और राधा रानी कहीं सोचती है कि उस युवक को मैं अपना शरीर भी अर्पित कर रही हूँ। तो जैसे कि ये विचार उनके मन में आ गए, तो ललिता चित्रा आदि सखियों को वो कहती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कि एक युवती को ये उचित नहीं है कि अपना मन, अपना हृदय और अपना शरीर तीन अलग अलग युवकों को अर्पित करना, पुरुषों को अर्पित करना, ये कुलीन स्त्री का लक्षण नहीं है। हाँ, तो जब ये बोल रही थी ललिता आदि सखियों से, तो चित्रा सखी ने कहा, हे राधिका, ये तीन अलग अलग कोई नहीं है। जिसने वेणुनाद किया था वो स्वयं कृष्ण ही है, जिसका तुमने ये सुंदर पेंटिंग देखा वो भी कौन है, कृष्ण ही है। और जो वहां से गवों को चरा रहे हैं, चरा कर जा रहे हैं, वो भी कृष्ण है। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का जो चित्त है, इंद्रिया है, शरीर आदि है, कृष्ण की भावना से सदैव कृष्णदास कविराज कहते हैं भावित रहता है। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि राधा रानी कोई सर्वसाधारण स्त्री नहीं है, गोपिका स्त्री नहीं है, क्या है, मूल शक्ति है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि राधा रानी किस प्रकार से भगवान की परम शक्ति है, मूल शक्ति है। तो राधा रानी का जो स्थान है कोई और नहीं ले सकता। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। कहते राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। दुई वस्तु भेद नाहि शास्त्र परमान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, शास्त्र हमें ये प्रमाणित करते हैं। हाँ, तो इसलिए सारे भक्तों में कोई श्रेष्ठतम है तो वो श्रीमती राधा रानी है।
राधा कृष्ण आयचे सदा एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे द्वीरो।
तो राधा रानी और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है, वो अभिन्न है, केवल लीला रस का आस्वादन करने हेतु वो दो अलग अलग रूप धारण करते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज ने लिखा, राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देह धरे। राधा कृष्ण क्या है? एक ही आत्मा है, एक ही है, लेकिन वो दो देह को धारण करते हैं केवल लीला रस का आस्वादन करने के लिए। इसलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि किस प्रकार से गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। जब कृष्ण अकेले थे तो गोलोक वृंदावन में एक स्थान है रास मंडल, वहां कृष्ण शतशृंग पर्वत के तलहटी में एक वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो भगवान कृष्ण जब वहां बैठे थे तो जो शतशृंग पर्वत है वही इस जगत में गोवर्धन के रूप में प्रकट होता है। तो भगवान जब वहां बैठे ही थे तो उस समय भगवान ने वहां सुंदर एक बगीचे को देखा जिसमें मालती आदि जो फ्लावर्स हैं वो खिले हुए थे। तो भगवान के हृदय में, कृष्ण के हृदय में एक इच्छा जागृत हो गई, आनंद अनुभूति करने की इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई। जैसे ही इच्छा जागृत हो गई उसी क्षण एक देवी उनके लेफ्ट साइड से प्रकट हो गई। ब्रह्मवर्त पुराण में सीक्वेंस आता है कि भगवान के राइट से क्या क्या प्रकट होता है और लेफ्ट से अलग अलग देवियां कैसे प्रकट होती है। तो भगवान ने जैसे ही सोचा आनंद मुझे अनुभव करना है, उसी समय एक सुंदर देवी का प्राकट्य होता है जो अलग अलग रत्नों से सुशोभित थे, वस्त्र आदि धारण किए थे, चंद्रमा के समान उनका तेज था और जिनके मुख में सदैव हासी थे और सुवर्ण के भांति उनका रंग था। ऐसी ये देवी प्रकट हो गई और वो प्रकट होते ही कृष्ण के मुख कमल को देखने लगी और वो कौन थे? श्रीमती राधा रानी। भगवान के मुख कमल को देखने लगी, देखते ही उन्होंने समझ लिया कृष्ण सेवा चाहते हैं और वहां से दौड़ने लगे। दौड़ते हुए उस रास मंडल में प्रवेश किया, उस गार्डन में गए और वहां से फूल तोड़ा और तोड़कर किसके लाकर दिया? उन्होंने कृष्ण को लाकर दिया। इसलिए प्रभुपाद राधा रानी का वर्णन करते हुए कहते हैं, जीवन की सफलता यही है कि हम यदि फ्लावर ऑफर करते हैं तो वो राधा रानी के हाथ में दे दो, कृष्ण उस फ्लावर को बिना किसी कंप्लेंट के स्वीकार करेंगे। हाँ, तो हमारा यही जीवन का लक्ष्य है, किस प्रकार से जो स्वामिनी है राधा रानी वो प्रसन्न हो जाए। तो राधा रानी ने वो फ्लावर कृष्ण को दिया जिसके कारण ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि उनका नाम राधा पड़ा। रा का मतलब है रास मंडल में प्रकट होते ही, धा का मतलब है धाव माना नाम, मतलब प्रकट होते ही जो दौड़ पड़े। किसके लिए दौड़ पड़े? कृष्ण की अनन्य सेवा के लिए जो दौड़ पड़े वो वास्तव में राधा है और वही व्यक्ति राधा के फॉलोअर्स है जो राधा रानी को असिस्ट करने के लिए उनकी सेवा में क्या करते हैं? निरंतर दौड़ते रहते हैं। वो नहीं सहजियों के समान चिल्लाते रहेंगे राधे राधे जपा करो चले आएंगे बिहारी, बिहारी तो नहीं आएंगे, आपको बिहार जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये नहीं होगा। तो राधा रानी की विशेषता क्या है? कृष्ण की सेवा में जिनका चित्त इंद्रिया और काया समर्पित है, रूप गोस्वामी कहते हैं एकात्मना हुई परो देह भेदो गतो तो, कृष्णदास कविराज कहते हैं क्यों वो सर्वोच्च है? कृष्णमय कृष्ण जार भीतर बाहिरे जहा जहा नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे। राधा रानी का एक नाम है कृष्णमयी। कृष्णमयी उनका नाम क्यों है? कृष्ण जार भीतर बाहिर है, कृष्ण उनके अंदर और बाहर है, जहां जहां नेत्र पड़े तहा तहा कृष्ण स्फुरे। उनका जो प्राण है वास्तव में जो आखिरी श्लोक है शिक्षा श्रम का वो राधा रानी के वचन है, किसी और गोपी के वचन नहीं है। आश्लेष्य वा पादरतां विनष्टुमां, ये जो वचन है आचार्यगण कहते हैं महाप्रभु के मुख से जगन्नाथपुरी में निकले और स्वरूप दामोदर ने अपने डायरी में लिख लिया और आगे ये वचन सबके सामने प्रस्तुत किए। तो ये जो आखिरी वचन श्लोक था वो वास्तव में राधा रानी के वचन है जिसमें वो कहते हैं आप मेरी प्रताड़ना करें या मेरे गाढ़ आलिंगन करें कुछ भी करें लेकिन आप मेरे सदैव क्या बने रहेंगे प्राणनाथ। यही कारण है राधा रानी की सर्वोच्च कथा। हाँ मैं भी 16,108 गोपियां हो सकती हैं या रानियां हो सकती हैं उनमें 108 श्रेष्ठ हैं या क्लोज है कृष्ण के उनमें से भी 8 हैं उसमें से भी 2 हैं दोनों में से भी 1 है शास्त्र कहते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में इस बात को स्थापित करने के लिए कृष्णदास कविराज कहते हैं तयोर अपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वाधिका। जब चंद्रावली और राधिका का वर्णन हो रहा था तो वहां कहते तयोर अपि उभयोर मध्ये उभय मींस टू उन सब में उन दोनों में भी राधिका सर्वाधिका उन दोनों में भी श्रेष्ठ कौन है श्रीमती राधिका है। महाभाव स्वरूपेयम गुणेर अति वरीयसी उनका महाभाव स्वरूप है और सारे गुणों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान राधा रानी की सर्वश्रेष्ठता को अधिकता को स्थापित करने के लिए कई प्रकार की लीलाएं प्रकट करते हैं। एवं उन्होंने द्वारका में भी राधा रानी की श्रेष्ठता का स्थापित किया कि ये जो महिषीगण है रानियां हैं उनसे मेरा इतना प्रीति नहीं है जितना प्रीति जितनी उन्नत सेवा की भावना राधा रानी की मेरे प्रति है। इवन ब्रज में भी चाहे वो माता यशोदा हो इतनी असंख्य गोपिकाएं हो उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है श्रीमती राधा रानी है। पुराणों में वर्णन आता है कि राधा रानी अपने कई सारे जो ब्रजवासी गण हैं विशेष रूप से जटिला कुटिला आदि उनको टोकते रहते थे कृष्ण भक्ति करने में बहुत जटिलताएं हैं और उनमें भी हृदय में बहुत कुटिलताएं हैं। हाँ तो ये सब दोनों के मूर्तिमान स्वरूप कौन है जटिला और कुटिला है। तो कृष्ण की सेवा में ये दोनों बाधाएं हैं। इवन अपने आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे हृदय में कुटिलता है और फिर भौतिक संसार की बहुत जटिलताएं हैं उससे हम परेशान रहते हैं लेकिन फिर भी हम भक्तों की सहायता से कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित है। तो भगवान इस स्थिति को स्थापित करने के लिए कैसे राधा रानी की स्थिति सबसे उन्नत है अधिक है भगवान एक विशेष लीला ब्रज में दिखाते हैं। तो एक बार कृष्ण जिन्हें वनमाली कहा जाता है गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी कहते हैं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं वनमाली शब्द यूज करते हैं कहते कि ऐसे वनमाली कृष्णा राधा रानी के संग में एक दिन कुंज में मिल रहे थे और राधा रानी बहुत अधिक दुखी थी उदास थे। राधा रानी जैसे कृष्ण को मिलती है और वो कहती है कि इस गोकुल में या ब्रज में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं मैं। कृष्ण ने सोचा अरे क्या हो गया। तो वहां राधा रानी कहती कि पूरे ब्रज में जिस प्रकार से मेरी जो सास और ननन जटिला और कुटिला मुझे हमेशा टोकती रहती हैं, फटकारती रहती हैं, वही उसी प्रकार से ब्रज की जो स्त्रियां हैं गोपिकाएं हैं मेरी जो अपोजिट पार्टी है वो भी मेरी बदनामी आजकल बहुत कर रहे हैं। किस प्रकार से जो चर्चा हो रही थी तो कृष्ण को तो शॉक लगा कि राधा रानी को मैं तो कभी उदास नहीं देखता कभी दुख उन्होंने कभी अपने हृदय से प्रकट नहीं किया लेकिन प्रथम बार अपना हृदय का जो महादुख है मेरे सामने प्रकट कर रही है। तो कृष्ण ने पूछा क्या ऐसी बात है। तो राधा रानी कहते हैं मुझे तो इन लोगों ने ये उपाधि दी है वो उपाधि क्या है किस नाम से टोकते हैं कृष्ण कलंकिनी। कृष्ण कलंकिनी वो तो कृष्ण पर शौक लग गया। कृष्ण ने कहा आपको कृष्ण कलंकिनी कहा जाता है। कृष्ण कलंकिनी मींस जिसको जिसको कृष्ण ने दूषित कर दिया। राधा रानी का सो कॉल्ड विवाह तो अभिमन्यु के साथ हुआ था। आचार्यगण कहते हैं अभिमन्यु कृष्ण का ही विस्तार है, लेकिन विशेष रूप से ब्रज में परकीया रस का आस्वादन करने के लिए भगवान इस प्रकार का विवाह की योजना ब्रज में करते हैं। तो जैसे राधा रानी ने कहा, उन्होंने कहा दूसरा जो अपोजिट पार्टी है वो बड़ा आनंदित होता है मुझे चिढ़ाने में, मेरे अपयश का वर्णन करने के लिए मैं इस कष्ट को बहुत झेल रही हूँ। कृष्ण का हाथ पकड़ती और कहते बताइए क्या मेरा अपराध है, क्या मेरा गुनाह है जो जिसके कारण मैं इतना इतने बदनामी को सहन कर रही हूँ। तो राधा रानी स्वयं ही कहती है मेरा अपराध एक ही है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैंने अपना सर्वस्व आपको अर्पित कर दिया है, यही मेरा एकमात्र गुनाह है। कहते हैं अलग अलग ब्रह्मा देवता इंद्र चंद्र वरुण योगी जन मुनिंद्र गण वो सब आपकी पूजा करें सेवा करें तो सबको स्वीकार्य है, लेकिन मैं आपसे प्रेम करो तो वो किसी को स्वीकार्य नहीं है। तो राधा रानी कहते कि ये बहुत बड़ा बर्डन मैं अपने सर में लेके ढो रही हूँ, मैं तैयार हूँ इस कष्ट को झेलने के लिए, लेकिन परंतु अभी कुछ दिनों से सहन नहीं हो रहा है, मैं विष का पान करने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन इस प्रकार का जो चर्चा है ब्रज में उसको सहन करना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। तो जब ये कृष्ण सुनते हैं तो राधा रानी को कृष्ण समझाने लगते हैं। हाँ कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं हे श्रीमती राधिका, इस कलंक को इस अपयश को क्या करूंगा, मैं पूर्ण रूप से मिटा दूंगा। और इतना ही नहीं, दूसरे दल के लोग जो तुम्हें चरित्रहीन कहते हैं या कुलटा कहते हैं या पातिव्रत्य आप पतिव्रता नारी नहीं हो इस प्रकार से तुम्हें दोष लगाते हैं, उस दोष को भी मैं क्या करूंगा पूर्ण रूप से मिटा दूंगा। और जो लोग इस प्रकार का दुर्वचन तुम्हें कहते हैं वही लोग वही जो स्त्रियां हैं इस दोष से ग्रसित हो जाएगी। तो जब भगवान ने कहा तो राधा रानी थोड़ी सी शांत हो जाती हैं और कृष्ण कहते हैं ये मेरा वचन है। तो राधा रानी वहां से चलती है अपने कुंज को छोड़कर। और फिर दूसरे दिन जो सुबह का समय हुआ तो कृष्ण तो वैसे ही बहुत नौटंकी है, इसलिए नटवर कहा जाता है उनको, कृष्ण से बढ़कर बेस्ट एक्टर कोई नहीं है। तो ऐसे कृष्ण सुबह सुबह उठे और उन्होंने बहाना बनाया कि मैं बीमार हूं, इसलिए वो कहते एक शब्द यूज किया है अंग तापम, भगवान को क्या हो गया शरीर ताप से जल जलित हो गया, भगवान को इतना बुखार आ गया और भगवान जानबूझकर यशोदा माता के गोद में सो गए और माता ने देखा कि इतना बुखार है मेरे लाला को और कृष्ण बुखार से तपित हो गए थे और भगवान थोड़े आंख खोलते थे फिर मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। यशोदा माता को लगा कि ये क्या हो गया है और फिर माता यशोदा डर गए जब कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने कहा हे कृष्ण प्लीज उठो, मैं तुम्हारी माता तुम्हें पुकार रहे हो। कृष्ण कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। उस समय माता यशोदा भी मूर्छित होकर गिर पड़ती है, मानो कि माता यशोदा मृत अवस्था में है। जब ये दोनों उस रूम में गिरे हुए थे तो नंद महाराज का आगमन होता है, देखते हैं कि मेरे प्राण तो कृष्ण तो मूर्छित है यशोदा भी मूर्छित है, तो ये जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं और शोक विलाप करने लगते हैं। उस समय और भी गौल सखागण आते हैं, वो भी रोने लगते हैं। सारे वहां रो रहे थे, कौन रुलाने के कारण कौन थे, कृष्ण थे। तो ऐसा जब एक क्रंदन मेला वहां हो रहा था तो उस समय और गोपगण आए और उन्होंने कई सारे मंत्रों का उच्चारण करने लगे, सोचा कृष्ण की बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन कोई उस बीमारी को दूर करना नहीं जानते थे। तो कृष्ण की बीमारी दवाई कौन है, श्रीमती राधा रानी है, उनकी महिमा को स्थापित करना उनका मेडिसिन है। तो उस समय नंद महाराज ने सोचा कि अभी तो किसी अच्छे वैद्य को ढूंढना पड़ेगा, डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने कई सारे दूतों को चारों दिशाओं में भेजा अलग अलग जगहों से दूध लाने का डॉक्टर लाने का प्रयास किया लेकिन कोई नहीं मिल रहा था। तो उस समय जब नंद महाराज बाहर से अपने महल में प्रवेश कर रहे थे तो उनको एक युवक दिखाई दिया, युवक और वो भी इतना सुंदर था जिसका मुख फ्रेश जो खिला हुआ कमल है उसके भांति शोभायमान हो रहा था और जिसकी आंखें मानो सूर्य अभी अभी उदित हो गया है उस वर्ण की उसकी आंखें थे और उसने अपने हाथ में एक बुक पकड़ा था, आयुर्वेद का ग्रंथ पकड़ा था, एक हाथ में दवाई थे और ऐसे घूम ही रहे थे। वो कौन थे? कृष्ण ही थे। अंदर भूत सो रहे हैं और दूसरे रूप से ड्रामा करके बाहर गेट पर है महल के ताकि मैं डॉक्टर के रूप में सलाह दे दो कि मेरे मेडिसिन क्या है। नंद महाराज ने देखा, पूछा, आप कौन है? उन्होंने कहा, जानते नहीं है, मैं एक्सपर्ट डॉक्टर हूं, मुझे वैद्य राज कहा जाता है, वैद्यों में भी राजा, हम डॉक्टरों में भी जो किंग है। तो ऐसे जब देखा वैद्यराज को प्रणाम करते नंद महाराज, उसको अपने महल में बुलाते हैं, आसन देते हैं, चरण धोते हैं, आदर सम्मान के साथ बिठाते हैं और उनको कहते हैं मेरे पुत्र का थोड़ा सा देखिए क्या हुआ है। तो वैद्यराज कृष्ण ही कृष्ण को देख रहे हैं। हाँ, वैद्यराज क्या करते, कृष्ण का हाथ पकड़ते हैं, नाड़ी चेक करते हैं तो कहते हैं इनकी जो बीमारी है बहुत गाढ़ है जिसके लिए एक विशेष विशेष दवाई की आवश्यकता है। दवाई तो मेरे पास है लेकिन विशेष जल की आवश्यकता है जिसको कहते हैं अनुपान। उस जल के बारे में वो कहते हैं अनुपान नामक एक जल चाहिए जो उस दवाई में मिश्रित करके यदि इसको दिया जाए तो इसकी बीमारी जल्द ठीक हो सकती है। तो नंद महाराज कहते कि हम तैयार हैं। हे वैद्यराज बताइए आपको कैसे आप वो जल चाहते हैं। तो कृष्ण ने कहा, उस वैद्यराज ने कहा कि मुझे तो एक पतिव्रता स्त्री चाहिए जो यमुना से एक घड़े में जल लेके आ जाए और कितना वो घड़ा कैसा सहस्र छिद्र होने चाहिए, उसमें हजारों छिद्रों से युक्त घड़ा जो यमुना से भर के लाया जाए और पतिव्रता स्त्री के अंजुलि तीन अंजुलि भर के जल लिए उसमें दवाई देकर कृष्ण को पिलाएंगे तो वो ठीक हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा हम तो तैयार हैं और एक बालों का केशों का ब्रिज बनाएंगे, उस ब्रिज में से चल के उस स्त्री को जाना पड़ेगा जल भरने के लिए। तो नंद महाराज तो तैयार हो गए। फिर सारे ब्रज के स्त्रियों को बुलाया गया, अभी हर स्त्री दिखा रही दिखाना चाहती थी देखो पतिव्रत धर्म में कितना पतिव्रता नारी हूं। तो वहां सारी स्त्रियां इकट्ठा होती है, मैसेंजर्स हर ब्रज के घर में जाकर बताते हैं पतिव्रता स्त्री को यमुना के किनारे बुलाया गया है, वहां उसको जल भरना है और पहुंचना है नंद महाराज के महल में। तो उस समय सारी स्त्रियां आती हैं और सारी स्त्रियां शुरू करती है वो कार्य, लेकिन देखा जाता है कि हर स्त्री क्या होती है फेल होने लगती है। बल्कि माता यशोदा स्वयं ही कहती है मेरा ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन मैंने अपने पति की सेवा न की हो, कलयुग में इम्पॉसिबल है। तो वहां वो कहती है माता यशोदा कि मैं करूंगी सर्वप्रथम। कृष्ण ने कहा अरे मेरी माता को लज्जित नहीं करना चाहता। तो कृष्ण डॉक्टर है, उन्होंने सोचा जो इस पुत्र की मां है उसके द्वारा जो इस्तेमाल की गई उसने जो भी यूज किया हो या जल आदि लाया हो वो किसी भी चीज को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो उससे वो ठीक नहीं होगा, बाकी स्त्रियां आवश्यक है। तो फिर वहां तो दो स्त्रियां थी, हाँ ब्रज की दो स्त्रियां बहुत प्रसिद्ध है, जटिला कुटिला, जटिला कुटिला नाम भी बड़े कठिन है। तो मुझे तो पहले समझ में नहीं आता था कौन बहू है कौन सास है, तो मैं थोड़ा ध्यान से सोचता था। हाँ बाद में पता चला कि जटिला और एक कुटिल, फिर एक सास और एक बहू। तो वैसे ही ये जटिला कुटिला आ गई तो जो हमेशा डांटती रहती थी कि तुम पतिव्रता नारी नहीं हो, राधा रानी को कभी कृष्ण से साथ तुम भागते रहते हो, कुंजों में जाती हो, विवाह तो मेरे अभिमन्यु से किया, लेकिन प्रेम आलाप किससे करती हो? कृष्ण से करती हो। इस प्रकार से वो सदैव डांटते रहते थे। तो फिर कुटिला चले गए। कुटिला ने कहा, मैं सीना आगे करके मैं हूँ पतिव्रता, अपने पति की इतनी सेवा करती हूँ। हाँ, तो निकले तो उनके पास एक घाघर पॉट दिया गया, और जिसमें वो लाने गई तो जो ब्रेज था बालों का, उस डॉक्टर ने, डॉक्टर कृष्णा, उन्होंने क्या किया था, जो स्वयं कृष्णा थे उनके बाल पकड़ के काटे थे चाकू से, और उससे ब्रिज बना दिया। और उस स्त्री को, ये जो कुटिला है, वो गए और उनको उस ब्रिज के ऊपर चढ़ने वाली थी, तो गिर गए जोर से, गिर के यमुना में बह रहे थे। तो कई सारे बालों ने जम ला ली और उनको पकड़ के लेके आ गए, ताकि बहुत हो गया आपका पतिव्रता धर्म, तो फेल हो गए। उसने कहा कि ये संभव ही नहीं है कि जल, इवन उन्होंने कहा हिमालय कन्या पार्वती को भी पॉसिबल नहीं है यमुना से जाकर इस प्रकार से सब छिद्र होने वाले घाघर में पानी लेके आना, ये पॉसिबल नहीं है इवन पार्वती देवी को भी। इसका मतलब वो आक्षेप ले रही थी किस पर, पार्वती देवी भी पतिव्रता नारी नहीं है। कुटिला कुछ भी बोल सकती है, जो राधा रानी को इतना बोल सकती है, जो सर्वोच्च देवी पार्वती देवी और बाकी देवों की कुछ खैरियत नहीं। तो जब कुटिला का ऐसे हो गया तो जटिला, हाँ, उन्होंने कहा मेरी बेटी का तो हरी बोल हो गया, तो स्वयं मुझे जाना होगा। हम आचार्य के रूप में आगे गए और उसकी हालत भी अपने पुत्र के समान हो गई। तो देखा कि कोई भी स्त्री क्वालिफाइड नहीं है, और इसे नहीं था कि ब्रज में कोई पतिव्रता नारी नहीं थी। हाँ, तो माता यशोदा चिंतित हो गई, माता यशोदा रोने लगी। माता यशोदा ने कहा, मेरे नीलमणि कृष्ण के लिए मैं यमुना से स्वयं चल जाऊंगी। हाँ, तो ऐसे जब रोते जा रहे थे तो माता यशोदा ने उस डॉक्टर कृष्णा को देखा, कहा, अरे आप तो एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हो, क्योंकि जो ब्राह्मणास है, ब्राह्मणास पांच प्रकार के कार्य करते थे, एस्ट्रोलॉजी भी करते थे, फिर वैद्य का कार्य करते थे, और फिर गुरु का कार्य करते थे, ऐसे कई सारे कार्य करते थे लोगों को गाइड करने के लिए, जैसे सनातन गोस्वामी भी करते थे ब्रज में। तो ऐसे उन्होंने कहा, तुम एस्ट्रोलॉजी भी जानते होंगे थोड़ा बहुत, बताओ ब्रज में क्या कोई ऐसी नारी नहीं है? उन्होंने तुरंत जमीन पर कुछ लिखना और रेखांकित करना शुरू किया, ड्रामा था सारा, कुछ आंकड़े आदि लिखना शुरू किया, फिर कहा रुको रुको, फाइल नहीं मिल रही एक स्त्री, और वो कौन है? उन्होंने कहा, जिस स्त्री के चरण कमलों के स्पर्श से त्रिभुवन भी पुनित हो जाता है, पुनित मीन्स पवित्र हो जाता है, ऐसी वो एक में स्त्री है ब्रज के, और वो है श्रीमती राधा रानी के। तो जैसे राधा रानी का नाम सुना, यशोदा माता गदगद हो गई, क्योंकि रोज ही तो बुलाती थी भोजन पकवान बनाने के लिए। दुर्वासा मुनि ने जब वर दिया था राधा रानी को, बरसाना से नंदगांव आया करते थे, तो जब राधा रानी का नाम पुकारा तो फिर राधा रानी को बुलाया गया। राधा रानी ने जब सुना कि कृष्ण की सेवा करने का मौका मिल रहा है, नाचने लगी, जोर जोर से नाचने लगी, हाथ ऊपर करके दौड़ते हुए आ गए, आकर यशोदा माता के चरण पकड़े, नंद महाराज को प्रणाम किया, और नंद महल में जैसे प्रवेश किया मानो सब जगह नंद महल प्रकाशमान हो उठा, और जितने भी सीनियर्स आदि थे वहां, ग्वाल आदि, सबको जाकर राधा रानी ने प्रणाम किया, आपने जो एकमेव इष्ट है कृष्णा, उनका स्मरण करने लगी। और फिर प्रार्थना करते हुए श्रीमती राधा रानी क्या करती है, वहां उस कार्य के लिए प्रवेश करने लगती है, निकलती है। जैसे राधा रानी निकली वो सेवा करने के लिए, तो सारे ब्रजवासीगण राधा रानी का गुणगान कर रहे थे, और राधा रानी फिर जल के लिए झुक गई, जैसे झुकी वो घाघर जिसमें कितने छेद थे, सहस्र हजार, तो जैसे झुकी तो जल में प्रतिबिंब देखा, किसका प्रतिबिंब देखा, कृष्ण का, कृष्ण हंस रहे थे, मानो कह रहे हो कि हे राधिका डरो मत, गो अहेड, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं। तो राधा रानी हाँ, फिर ब्रिज को क्रॉस करती है, मिडल में जाती है, जल भरती है और लेके जैसे ही निकलती है गागर को सर में रखा जाता है, तो उस समय ललिता सखी को कहती है कि हे ललिता, जरा तुम देखो कि पानी की बूंदे तो नहीं गिर रही है।
ललिता देवी उनको कहती है कि
एक बूंद भी जल का नीचे गिर नहीं रहा है। और फिर जैसे राधा देखा कि वैसे कहते हैं कि उस समय भगवान ने अपने शक्ति के द्वारा हजारों उंगलियां प्रकट हो गए और हजारों उंगलियों के द्वारा हजार छिद्र क्या हो गए, बंद हो गए। और राधा रानी उस जल को लेके निकले, हाँ, तो जोर से ललिता सती चिल्लाने लगे, वृषभानुनंदिनी के, राधा रानी के, सारे ब्रजवासी चिल्ला रहे थे, जोर जोर से गा रहे थे। और फिर पानी लेके पहुंचे तो उस डॉक्टर कृष्णा के सामने आ गए। उन्होंने कहा, अरे वो डॉक्टर कृष्णा उनको आदर देने लगे, सम्मान करने लगे। उन्होंने कहा कि हे देवी, आप साध्वी हो, आप वास्तव में साध्वी पतिव्रता हो, जस्ट रेडी हो, और आप परम सौभाग्यवती हो, और इस सेवा को तुमने किया है हाँ कृष्ण के हेतु। तो फिर जितनी भी स्त्रियां थी बाकी सब इकट्ठा होकर किसको देख रही थी, राधा रानी को देख रही थी। अरे हम भी तो पतिव्रता हैं, इसके बारे में तो बहुत कुछ बोला जा रहा था, लेकिन क्या हो गया आजकल, कहते भाग्य कभी भी बदल सकता है किसी का। हाँ, ऐसे सारी स्त्रियां चर्चा करने लगे, कहते हमारा भाग्य ठीक नहीं था, हमारा भाग्य तो बदल गया। हाँ, तो ब्रज में कृष्ण ने स्थापित किया कि राधिका सर्वाधिका। फिर कृष्ण जब द्वारका पहुंचे तो वहां भी उन्होंने स्थापित किया। वहां पुराणों में वर्णन आता है कि राधा रानी जब यहां से निकल पड़े बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए, अहमदाबाद के पास है सिद्धाश्रम जिसे कहते हैं, जहां कपिल मुनि अपना तपस्या कर रहे थे और जिसके तट पर देहोवती ने उनकी सेवा की थी। जब इनकी तपस्या देखी भगवान कपिल की, तो भगवान गरुड़ के ऊपर आए और तपस्या सेवा आदि देखकर भगवान के आंखों से बूंदे गिरी, जिससे वो बिंदु सरोवर बना, तो उसी को सिद्धाश्रम भी कहते हैं। तो राधा रानी अपने सारे सखियों के संग में सोचा कि हमें बिंदु सरोवर में चलना है स्नान करने के लिए, तो वो स्नान करने के लिए निकल पड़ते वहां। और स्नान करने के लिए जब निकले तो कृष्ण ने कहा हम भी निकलेंगे द्वारका से स्नान करने के लिए, कहा बिंदु सरोवर में स्नान करेंगे। तो सारे रानियों ने कहा 16,108 हम भी निकलेंगे। तो पूरा एक कैंप निकल रहा था द्वारका से, और ये ब्रज यात्रा यहाँ से, वो द्वारका यात्रा वहां से, बिंदु सरोवर में। तो पहले राधा रानी का ग्रुप पहुंचा, और राधा रानी का ग्रुप पहुंचा तो सारे हट्टे कट्टे ग्वाले उनके संग में थे और डंडे लेकर खड़े थे। राधा रानी बिंदु सरोवर में स्नान करेगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आसपास कोई खड़ा रहे। तो वहां वर्णन आता है कि सारे ग्वाले डंडे हाथ में लेकर बिंदु सरोवर के चारों ओर खड़े थे, और कृष्ण का कैंप यहां से गुजर रहा था। और इन सबको बड़ी उत्सुकता थी, किसको, सत्यभामा, इसको बड़ी ईर्ष्या थी, मुझसे सुंदर कोई हो और संभव नहीं है। सत्यभामा को हमेशा लगता था कि मुझसे सौंदर्यवती संसार में कोई और नहीं है। और राधिका का जब नाम लिया जाता था तो उसको थोड़ा सा कष्ट होता था, ईर्ष्या होती थी, द्वेष होता था, अरे मुझसे सुंदर है नहीं हो सकता। उन्होंने कहा देखना है, एक बार देखना है, चाहती हूँ, देखती हूँ कि कितने सुंदर है। तो ये सारे पहुंचे तो ये द्वारका के सब निकल गए स्नान के लिए और जबरदस्ती घुस रहे थे। और फिर कृष्ण को ये सब राधे रानियां पूछती कि कौन स्नान कर रहा है, कितना सिक्योरिटी ताफा सिक्योरिटी गार्ड्स लेके आए हैं। कृष्ण ने कहा मेरी प्रिया है राधा रानी स्नान कर रही है वहां। हाँ, तो ये सब देखना चाह रही थी उन्हें उत्सुकता के साथ, ये रानियां बहुत सुना था, लेकिन देखा ऐसे नहीं कि उस समय में कुछ व्हाट्सएप होता तो तुरंत भेज देते ब्रज से, सारी रानियों का कोई ग्रुप होता, ऐसे नहीं था। तो वहां तो जब दूर से ही ये सब लोग एंट्री करना चाह रहे थे तो इनके सेवकों को लोगों को ग्वाल बालों ने पिटाई की भगाया वहां से। और फिर राधा रानी जब निकली उनके सौंदर्य को देखा जब रुक्मिणी ने और सत्य भामा ने वहां वर्णन करते व्यासदेव रुक्मिणी ने सत्य भामा ने देखा देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ती है। वो समझ में आता है कि राधा रानी का सौंदर्य क्या है अनुपम है। इसलिए राधा रानी को कहते हैं मदन मोहना मोहिनी। भगवान को परमेश्वर कहा जा सकता है लेकिन राधा रानी को क्या कहते हैं परम ईश्वर ईश्वरी। ये राधा रानी की विशेषता है। हाँ तो ऐसे राधा रानी फिर आती है फिर हम सुनते हैं कि किस प्रकार से वहां निवास होता है और फिर राधा रानी को एक स्थान दिया जाता है हाँ स्टे करने के लिए। और कृष्ण कहते हैं सत्यभामा और रुक्मिणी को कि आप सेवा करो उनकी। तो कृष्ण कहते देखो हाँ श्रीमती राधा रानी रोज हाँ शयन करने के पूर्व शर्करा युक्त मीठा मिल्क पीती है गोल्डन कप में हाँ दूध का पान करती है। तो रुक्मिणी ने कहा चलो मैं आज वो सेवा करती हूँ राधा रानी को मेरा आहो भाग्य हाँ जैसे उद्धव कहते हैं कितना भाग्य है नंद व्रज के स्त्रियों का। हाँ तो ऐसे जब रुक्मिणी ने सोचा कि मैं आज उनकी सेवा करती हूँ तो रुक्मिणी देवी ग्लास लेके जाती है दूध का और देती है दूध राधा रानी उसको पीती है। रुक्मिणी देवी वापस आती है कृष्ण की सेवा करने के लिए चरण सेवा और कृष्ण का चरण दबाए रहे थे तो उस समय देखा कि कृष्ण के चरण कमलों में छाले पड़े हुए हैं बड़े बड़े और हाथ लगाते कृष्ण चिल्ला रहे हैं बहुत दुखी हो रहे हैं कष्ट वेदना हो रही है। तो रुक्मिणी देवी कहते कि कृष्णा आपको तो मैंने देखा नहीं आप कहां बिना शूज के चले हो द्वारका में कहां इतने छाले आपके चरण कमलों में बताइए क्या कारण है। तो कृष्ण एक विशेष श्लोक बोलते हैं कृष्ण कहते हैं राधा रानी की राधिका सर्वाधिका उन्होंने ब्रज में स्थापित किया अभी कृष्ण द्वारका में वही स्थापित कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं श्री राधिका या हृदया रविंदे पादारविंदम हि विराजते मैं अहर्निशं प्रश्रय पाशबद्धं लवं लवार्धं न चलत्यतीव अद्योष्ण दुग्धा प्रतिपान तांग्र्या वृक्षालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति मन्दोष्णमेवं हि न दत्तमस्य युष्मा विरुष्णा तुपया प्रदत्तम। तूने क्या किया पय मीन्स दूध दे दिया। वो रुक्मिणी को कह रहे तुमने हे रुक्मिणी तुमने दूध दे दिया कैसा दूध था वो कहते हैं उष्ण बहुत गर्म दूध था। हाँ गर्म दूध तुमने दिया और जिस गर्म दूध को किसने पी लिया अत्य उष्ण दुग्ध प्रतिपान राधा रानी ने पी लिया गर्म दूध उससे क्या हुआ आंग्रे वृक्षाल कास्ते मम प्रोच्छलन्ति। हाँ वो दूध को उन्होंने पी लिया हाँ जिसके कारण वो दूध उनके हृदय तक पहुंच गया और हृदय में क्या रखती है राधा रानी श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम सदा विराजते राधिका के हृदय रूपी कमल में मेरे चरण रूपी कमल क्या करते हैं सदैव विराजमान है। अहर्निशम एक क्षण के लिए उनके हृदय से मेरे चरण कमल दूर नहीं होते और तुमने इतना गर्म दूध पिलाया जिस गर्म दूध के कारण मेरे चरण कमल क्या हो गए जल गए। भगवान ये दिखाने के लिए कि राधा रानी की जो प्रीति है वो सर्वाधिका है जिसकी कोई तुलना नहीं है। हाँ इसलिए भागवतम को कंपाइल किया गया है। भागवतम की ग्लोरी यही है महिमा यही है कि वास्तव में राधा रानी की परम महिमा को स्थापित किया जाए क्योंकि बाकी पुराणों के जो विषय हैं केंद्र हैं केंद्र बिंदु तो कृष्ण नहीं है लेकिन श्रीमद् भागवतम के जो केंद्र बिंदु हैं वो कृष्ण हैं। भागवतम के जो नायक है वो कृष्ण है। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि राधा रानी के प्रति उनका प्रगाढ़ आसक्ति है। हाँ, तो इसलिए राधा रानी की सर्वोच्चता है। इवन भागवत भी स्थापित करता है एक श्लोक में, जहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब शरद पूर्णिमा के रात्रि में कृष्ण अपने गोपिकाओं के संग में जब रास क्रीड़ा कर रहे थे, तो राधा रानी किसी कारणवश उस रास क्रीड़ा को छोड़ के निकल जाती हैं। भगवान को जब राधा रानी नहीं है, उनको किसी भी चीज से आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो भगवान ने भी उस रास क्रीड़ा को छोड़ा, रास लीला को छोड़ा, और भगवान राधा रानी की सर्च में निकल पड़े। और फिर राधा रानी को मिलते हैं, और यह गोपियों ने देखा कि राधा कृष्ण रास क्रीड़ा से गायब है। वो सारे लोग निकल पड़ते बाहर, सारी गोपिकाएं उनको ढूंढने के लिए निकलती हैं। और फिर गोपिकाएं तुलसी से पूछती है, तुलसी तुम तो सदैव उनके चरण कमलों में हो। कच्ची तुलसी कहती कि बताओ बताओ, आपने श्याम सुंदर कृष्ण को कहां देखा है? तो वो बताती नहीं है। फिर ये सारी गोपिकाएं एक श्लोक बोलती हैं, जिसमें वो कहती हैं, अनयाराधितो नूनं भगवान हरेश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतोयम् अनयारदः। अनया आराधितो नूनं, वहां कहते हैं कि भागवत में ये विशेष रूप से गुप्त रूप से नाम लिया है शुकदेव गोस्वामी ने। अनया आराधितो नूनं मतलब हम में से हटके एक स्त्री ने, एक गोपिका ने आराधना की है। नूनम निश्चय भगवान हरिश्वरा, जो भगवान हरि है उनकी। यन्नो विहाय गोविंद, यन्नो मीन्स हमें विहाय में छोड़ दिया, हमें छोड़कर वो गोविंद एक गोपी के साथ गए। क्या कारण हो सकता है? ये सारी गोपियां कहते हैं प्रीतोयम, कहते कि हमसे अधिक प्रीति उसकी थी, इसके कारण से हम सबको छोड़कर कृष्ण उसके साथ गए। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं, हाँ, तयोर मध्ये, तयोर अपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वाधिका। तो इन सारी गोपिकाओं में, चाहे द्वारका की वो महिषीगण हो, क्वींस हो, या फिर गोपिकाएं हो ब्रज की, उन सब में श्रेष्ठ राधा रानी है। और राधा रानी जो कृष्ण को अपनी ओर सदैव आकर्षित करती है। हाँ, कृष्ण का जो रूप है वो आकर्षक क्यों लगता है? क्योंकि वो संधिनी शक्ति के कारण। लेकिन राधा रानी का रूप आकर्षित क्यों है? आह्लादिनी शक्ति के कारण, जो संधिनी शक्ति से परम है, जिसके कारण कृष्ण भी आह्लादिनी स्वरूपा श्रीमती राधा रानी की ओर आकृष्ट है। इसलिए रूपों को समय कहते हैं। मदन मोहन हो सकते हैं कृष्ण, लेकिन हमारी राधा रानी क्या है? मदन मोहन मोहिनी, जो कृष्ण को भी हराने में समर्थ सामर्थ्यवान है। प्रभुपाद जब वृंदावन में लेक्चर दे रहे थे, तो अपने भक्तों को पूछा कि जितने भी ग्रंथ आप पढ़ा उसमें कोई मिला जो कृष्ण से श्रेष्ठ हो? तो भक्त चुप हो गए। कृष्ण से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? प्रभुपाद ने कहा एक पर्सनालिटी है, और वो कौन है? राधा रानी है, जो कृष्ण को भी हराने का सामर्थ्य रखती है। गोस्वामीगण एक लीला का वर्णन करते हैं। हाँ, मैं टाइम तो हो गया बहुत ज्यादा, मैं उसका जस्ट वर्णन करके विराम देने का प्रयास करता हूँ। तो गोस्वामीगण कहते हैं कि राधा रानी इतनी सामर्थ्यवान है, हाँ, कि कृष्ण को भी हरा देती है। और उनके पास वो सामर्थ्य क्या है? कृष्ण की सेवा करने की परम भावना, जो कृष्ण को हरा देती है। तो एक बार कृष्ण भांडेर वन में जाते हैं, भांडेर वन के नीचे अपने सखाओं से मिलने के लिए, देखने के लिए। तो वहां उस समय कई सारी गोपिकाएं भी वहां आ जाती हैं। तो ये गोपिकाएं आपस में बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे, और गोपिकाओं के चर्चा का विषय कौन था? कृष्ण। तो कृष्ण ने देखा मेरे बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा सा नजदीक गए, सुन रहे थे दूर से। तो भगवान फिर अपना स्तुति खुद गाने लगे अपने सखाओं के संग में। वहां गोपिकाएं थे, राधा रानी भी थे, ललिता विशाखा आदि, और यह कृष्ण अपने सखाओं के संग में थे। तो वहां जब चर्चा हो रही थी, तो कृष्ण यहाँ अपने गोप सखाओं को कहते कि देखो रेसलिंग में या कुश्ती में मैं कितना शक्तिशाली हूं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, ब्रज में कोई है ही नहीं। जो मेरे सामने कुश्ती करने के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाए। तो ऐसा जो बोल ही रहे थे, भगवान अपना बुझाए दिखा रहे थे, और वो कह रहे थे कि मैं सदैव विजयी होता हूँ, इवन मैं सुबल को भी हरा देता हूँ, श्रीरामा को भी हरा देता हूँ, ऐसे बहुत सारे सखाओं के नाम ले रहे थे। और कृष्ण ने कहा इतना ही नहीं, कितने सारे आसुरों को मैंने मारा है पता है, और थोड़ा जोर से बोल रहे थे ताकि वो ललिता के कानों में जाए, क्योंकि ललिता देवी उनको पता है कुछ ना कुछ छेड़खानी करती हैं, कुछ ना कुछ विशेष लीला अरेंज कर सकती है फिर राधा रानी के साथ, अगेंस्ट पार्टी है। हाँ, तो फिर जैसे जोर जोर से बोल रहे थे तो ललिता सखी के कानों में गई ये बात। ललिता सखी दौड़ते हुए वहां कहती है, अच्छा तुम्हें इतना घमंड है, तुम्हें क्या लगता है गोवर्धन तुमने उठाया था? कहते हमारे सारे सखियों ने काठियां स्टिक्स लगा लगा के गोवर्धन को उठाया था, तुम्हें इतना गर्व है अपनी भुजाओं पर, अपनी शक्ति पर, अब अपने सामर्थ्य पर, बल पर, मेरी सखी राधिका यदि भोजन नहीं बनाए हम तुम्हारा बल बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए तो तुम्हारी माता रोज बुलाती है, मेरे सखी के हाथ का पकवान खा खा कर अपने आप को बलशाली कहते हो, ऐसी भगवान की तो खैरियत नहीं। ललित कृष्ण ब्रज में किसी के सामने चुप हो जाते हैं बोलने में, तो वो कौन है? ललिता सखी। इसलिए कृष्ण कहते हैं एक दिन ललिता को चैतन्य चरितमृत में आता है, हाँ ललिता सखी मेरी डांसर गुरु है, बताओ तुम्हें। ललिता सखी कहते कौन है? कहते वो राधिका है, वो मुझे नचाती रहती है। हाँ, इस प्रकार से ललिता सखी कुछ बोले तो कृष्ण चुप हो जाते हैं। तो फिर ललिता सखी कहती है कि ठीक है, तुम्हें इतना घमंड है कुश्ती का, हाँ रेसलिंग मैच का, कुश्ती करनी है तो किसके साथ करके दिखाओ? मेरे प्राण सखी के साथ, हाँ कुश्ती करके दिखाओ। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, फिर वो डेट अनाउंस हो गए, ऐसे नहीं कि उसी समय शुरू हो गए, डेट अनाउंस हो गए, स्टेडियम बनाया गया मिट्टी का वहां भानेर वन में, भानेर वट के नीचे, और फिर कहा कि सब जगह एड लगाई जाए, केवल माता पिता को बुलाना नहीं, ब्रज में जितने भी ये गौर सखा गोपिकाएं थे सबने कहा कि हम माता पिताओं को नहीं बुलाएंगे, मयूर पंछी और जितने भी हिरण प्राणी सबको बुलाएंगे इस मैच में, और सारी गोपिकाएं होंगे, सारे गौर सखा होंगे, और ये भव्य दिव्य मैच होगा, कलरफुल मैच। तो फिर सबको बुलाया गया और डेट फाइनल हो गई, दोनों पार्टीज अभी सुबह सुबह तैयार हो गई। हाँ, वहां ललिता सखी राधा रानी को रेसलिंग मैच के जो कपड़े हैं वो पहना रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, और यहाँ कृष्ण भी सज रहे थे, मधुमंगल सखाओं को सजा रहे थे अपना जोर लगा के, वैसे ही उनकी वीकनेस लड्डू है, तो ऐसे मधुमंगल जी सजा रहे थे और उनको थोड़ा प्रोत्साहित कर रहे थे, वचन भी बोल रहे थे। हाँ, कुछ कोर्ट्स जैसे हम जपा करना अपने आप में एक रेसलिंग मैच है, उसमें हम कोर्ट्स पढ़ते हैं, तभी थोड़ा सा लगता है कि कुछ करूंगा आज कल करूंगा, तो वैसे मधुमंगल कुछ उनको कुछ वृतांत तो सुना रहे थे, कोर्ट्स पढ़वा रहे थे, पिछले उदाहरण दे रहे थे, और कृष्णा भी बड़े ऐसे कूद रहे थे कि अभी बाहर निकलना है मुझे, अभी हराता हूँ प्राण सखी ललिता की, इतना घमंड मेरे सामने। हाँ, तो ऐसे हो ही रहा था, तो यहाँ जो ललिता सखी है वो राधा रानी को कह रहे थे कि आप तैयार हो जाओ, अब एक सीक्रेट बताती हूँ, कृष्ण को घायल कर दो। और यहाँ मधुमंगल तो उनकी मसाज कर रहे थे वॉय लगा के, तो शक्ति उन्हें मिले राधा रानी के अगेंस्ट लड़ने के लिए, कोई अगेंस्ट नहीं लड़ सकता राधा रानी, इम्पॉसिबल है। हाँ, कृष्ण भी हार मानते हैं, इसलिए जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपना सर झुका दिया उनके चरणों में, और उनके चरण अपने सर में रख दिए, जयदेव गोस्वामी हाँ वर्णन करते हैं। तो ऐसे जब हुआ तो सारे जो दो पार्टी के लोग थे दो अलग अलग प्रकार से चिल्ला रहे थे, जो कृष्णा के पार्टी के सारे प्रभुजी थे गोप सखा वो चिल्ला रहे थे जय श्री कृष्णा, बोलिए
जय श्री कृष्णा,
और यहाँ सब क्या कह रहे थे राधा रानी के, जय जय श्री राधे, जोर से राधा रानी की सखिया गोपिकाएं चिल्ला रहे थे। तो उस समय मधुमंगल कहते निकलो अभी बाहर, कब तक छुपोगे। और यहाँ अलग अलग ट्रिक्स ललिता सखी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो मैं अभी घूंघट तुम्हारे सर पे डाल रही हूं, जैसे ही बाहर निकलोगी दो कार्य करना है। सबसे पहले कृष्ण जैसे ही सामने आ रहे हो अपने घूंघट को हल्के ऊपर करना है, और कृष्ण को देखना भी है तो कैसे देखो, तिरछी नजर से, हाँ कटाक्ष, पूर्ण अक्ष नहीं, हाँ कट किया हुआ अक्ष कटाक्ष, हाँ इसलिए शिवजी राधा कृपा कटाक्ष शिवजी ने उच्चारित किया है पार्वती और शिवजी। वो कहते हैं कि हे राधा रानी थोड़ा सा कटाक्ष हमारी ओर भी डालो, तो जो शिवजी और पार्वती कहते हैं। तो यहाँ ललिता सखी ने कहा ये औषध पावरफुल है, हे राधा रानी क्या करो, पहला हल्का घूंघट ऊपर करना, दूसरा थोड़ा सा कटाक्ष तिरछी नजर से कृष्ण की ओर देखना। रेसलिंग मैच कौन जीत जाएगा, तुम ही जीत जाओगे। अभी कृष्ण को लगा कि आज तो मैं जीत के दिखाऊंगा। कृष्ण बाहर निकले, हाँ निकले तो वहां गौड़िया आचार्य गण वर्णन करते हैं कि कृष्ण जैसे बाहर निकले तो दोनों ओर की आवाज कृष्ण के कानों में गूंज रही थी, कभी कृष्णा कभी राधे, कभी कृष्णा कभी राधे, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था, कौन मेरे पार्टी का है। लेकिन ज्यादा आवाज किसकी आ रही थी, जय जय श्री राधे। तो ऐसी आवाज जैसे आ रही थी कृष्ण बाहर निकले, राधा रानी भी वहां से आ गए, और राधा रानी ने हल्का अपना घूंघट ऊपर करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, और हवा बहने लगी धीर समीरे यमुना तीरे, जैसे वो समय कहते हैं, जैसे ही धीर समीर बहने लगा और वो हवा राधा रानी को स्पर्श की गई, स्पर्श हुई, और वही स्पर्श की हुई जो हवा है वो गई और किसको छू जाती है, कृष्ण को। वहां कहते हैं सबसे पहले कोई चीज कृष्ण की पिघलने लगी, बटर के समान पिघलने लगे तो उनके घुटने थे। सोचो रेसलिंग में इंपॉर्टेंट घुटने हैं, जो खड़ाई नहीं रह सकता वो फाइट क्या कर सकता है। तो कहते हैं वो हवा जैसे कृष्ण को स्पर्श हुए कृष्ण के घुटने पिघलने लगे, बटर के समान मुलायम हो गए, मधुमंगल के कंधों में अपना हाथ रखा हुआ था, कृष्ण गिरने लगे थे। तो मधुमंगल ने कहा रुको अभी तो प्रवेश नहीं किया है, बिना प्रवेश के तुम्हारी ऐसी हालत है। तो राजा रानी को सामने देखते ही हाँ क्लीन बोल्ड हो जाओगे, हाँ तो राधा रानी आ जाती है। कृष्ण कैसे तो अपने आप को संभाले हुए थे, दो दो सखा श्रीराम मधुमंगल पकड़े हुए थे। फिर जैसे ही राधा रानी सामने आई, ललिता सखी उनके इंस्ट्रक्टर है, शिक्षा गुरु कौन है, ललिता सखी है। हाँ ललिता सखी ने जैसे कहा हाँ तो कृष्णा कि वो राधा रानी ने अपने घूंघट उठा के तिरछा हाँ तिरछी दृष्टि डाली, डालते ही कृष्णा गिरते नहीं, क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। फिर सखिया जोर से चिल्लाती है, चिल्लाइए जय जय श्री राधे। तो अभी कृष्ण पूर्ण रूपेण पराजित हो गए। इसलिए शास्त्र कहते प्रभुपाद कहते हाँ कृष्ण इज द प्रॉपर्टी ऑफ श्रीमती राधा रानी, इसलिए राधा रानी की प्रॉपर्टी कौन है, कृष्णा है। तो कृष्ण को हम चुराने का प्रयास कर रहे हैं राधा रानी के अनुगत हुए बिना, जैसे महाप्रभु ने डांटा था रघुनाथ स्वामी को, हाँ वो नित्यानंद प्रभु के अनुगत हुए बिना किसको अप्रोच कर रहे थे, गौरांग महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु उनके धन है, इसलिए शिवजी को एक पुराण में महादेव कृष्ण कहते हैं यो मामेव प्रपन्नश्च मत्प्रियां न महेश्वरां न कदापि न चाप्नोति मामेवं ते मयोदितं। कृष्ण शिवजी को कहते ये मामेव प्रपन्नश्च मत्प्रियां न महेश्वर, हे महेश्वर कोई मेरी प्रिया का शरण नहीं ग्रहण करता और मुझे शरण ग्रहण करने का प्रयास करता है। न पापनो न चापनोति मामेव, मैं उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण स्वयं शिवजी को कहते हैं तस्मा सर्व प्रयत्न मत प्रियाम शरणम व्रजे। इसलिए पूरे प्रयास के साथ इस गौड़िया संप्रदाय में वैष्णव को राधा रानी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आश्रित्य मत प्रियाम रुद्रम आवशी कर तुम रहसे, उनके आश्रित होने से व्यक्ति मुझे वश में कर सकता है। इसलिए हम कृष्ण के नाम के आगे हमेशा राधा का नाम यूज करते हैं, राधा कृष्ण राधा गोविंद। बल्कि तुलसीदास जब वहां पहुंचे बरसाना में, वो तो पिघल गए। तुलसीदास ने कहा मैं सारे धामों का भ्रमण कर चुका हूँ, द्वारका भी गया और जगन्नाथपुरी भी गया और सब जगह गया, हाँ सब जगह, या अयोध्या में भी सीताराम चिल्लाते रहते हैं या फिर राधा कृष्ण कहते हैं, लेकिन कहते यहाँ अमेजिंग है ब्रज में, हाँ यहाँ क्या बोलते हैं केवल राधे राधे, हाँ क्या बोलते हैं राधे राधे, हाँ। लेकिन प्रभुपाद जब वॉक कर रहे थे तो प्रभुपाद को जो ब्रजवासीगण वॉक करते हुए कहते थे महाराज राधे राधे, स्वामी जी राधे राधे, प्रभुपाद कहते हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा ही उच्चारण करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद एक महान आचार्य हैं जिन पर वास्तव में श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा है और राधा रानी के कृपा के मूर्तिमान स्वरूप है। हाँ सरल वे है राधा रानी का आश्रय ग्रहण करने का, श्री गुरु का आश्रय ग्रहण करना। आचार्य जब कहते हैं श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी, और ऐसे महान आचार्य या गुरु आइडियल उदाहरण श्री प्रभुपाद है जिन्होंने श्रीमती राधा रानी का आश्रय ग्रहण किया। इवन अपनी पहली पोयम में उन्होंने लिखा कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, ये पुण्य करीबे जब राधा रानी खुशी हवे। राधा रानी खुश होगे तो फिर ठीक है। ध्रुव आरती बोले तो माता है, वो कहते आपको प्रयास करना चाहिए निश्चित रूप से राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद हम विशेष आचार्य हैं जिनकी कृपा से हमें ये मौका मिला है राधा रानी का आश्रय ग्रहण करने का, और उदाहरण शास्त्रों में हम प्राप्त करते हैं। तो राधा रानी का आश्रय ग्रहण करने का मतलब है नामे रुचि, नाम का आश्रय और आध्यात्मिक गुरु की सेवा। हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी हरि नाम का उच्चारण राधापण के तट पर करते थे, राधा रानी स्वयं आकर अपना पल्लू से उनकी रक्षा करती है धूप से, कृष्ण स्वयं आकर डंडा पकड़ते हैं शेर से रक्षा करने के लिए। तो राधा रानी का आश्रय हरि नाम का आश्रय है। हाँ और श्यामानंद प्रभु के जीवन से हम सुनते हैं किस प्रकार से उन्होंने गुरु और वैष्णव की सेवा की, जिसके द्वारा जो दुखी कृष्णदास थे राधा रानी की कृपा से उनको क्या कहा गया श्यामानंद प्रभु। तो इस प्रकार से राधा रानी की जो पोजीशन है वो सर्वोत्कृष्ट है, और सर्वोत्कृष्ट पोजीशन को शास्त्रों से आचार्य के माध्यम से हमें दिन भी दिन समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जितने अधिक उनका गुणगान करेंगे उनकी महिमा को समझने का प्रयास करेंगे विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होकर उनकी शिक्षाओं को समझकर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही समझा सकते हैं। इसलिए जो गोरा चांद है जो काला चांद है, कृष्ण काला चांद है वो गोरा चांद बनते हैं हाँ राधा रानी को समझने के लिए। राधा भाव द्विती सुवलितम नवमे कृष्ण स्वरूपम, राधा के भाव और द्विती को समझने के लिए कृष्ण ये सारे कार्य करते हैं। तो आज विशेष दिन है, तो हमें आज के दिन राधा रानी का गुण गाना चाहिए अपने जीवन से, उनका गुण कर्णों से सुनना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, प्रार्थनाओं का उच्चारण करना चाहिए। आज के दिन जो कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है, कृष्ण को जो बहुत अधिक प्रिय है तो कृष्ण और प्रसन्न हो सकते हैं जब हम राधा रानी का गुण गाएं। तो हम यहाँ विराम देते हैं, एक छोटा सा गीत गाएंगे और समापन करेंगे। एक गीत है राधिका शरण रेणु नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने दो ग्रंथ लिखे हैं प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये गीत प्रेम भक्ति चंद्रिका में उन्होंने वर्णित किया है राधा रानी की महिमा का उच्चारण है। तो चोर से बचाना
राधिका चरण रेणु भूषण करिया कानो।
जोर से बोलिए,
राधिका चरण रेणु भूषण करिया कानो। आनायसे पावे गिरिधारे, राधिका चरण आश्रय जय करे से महाशय। राधिका चरण आश्रय जय करे से महाशय।
समवेत गौर भक्त वृंद के
निताय निताय गौर प्रेमानंदे।